थोड़ी सी बात कर लूं इस बारे में भी कि जैसे कुरान की डिफरेंट फेजेस गुजरे हैं, पहले बिल्कुल याद करते थे, फिर हड्डियों पे लिखा जाता था, तो हदीस के लिए क्या था? तो सबसे पहली चीज ये कि हिफ्ज और सिमा था, सहाबा सुनते और उसको याद कर लेते थे। ठीक है, आपकी जिंदगी में तो क्या था, बल्कि शुरू से शुरू करते हैं, हदीस कैसे महफूज हुई? अब इस हिस्से का टॉपिक क्या है हमारा, हदीस कैसे महफूज हुई? तो सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे सहाबे भी वही करते थे, तो फिर वो चीज तो कभी भूलेगी भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या था, बात को सुनते और याद कर लेते। ठीक है, ये चलता रहा इल्म। हदीसें इस तरह से पहले दौर के लोग याद किया करते थे जैसे आज हम दुआएं याद करते हैं और कुरान की आयतें याद करते हैं। आज जैसे कुरान के हाफिज हैं, ऐसे हदीस के हाफिज थे, हमारी तारीख में ऐसे लोग हमें मिलते हैं, सहाबा किराम भी करते थे, और अल्लाह के नबी की ये दुआ लेने के लिए भी बहुत सारे लोग याद करते थे। फिर तीसरी सूरत हदीस की हिफाजत की क्या थी कि इसको लिखा गया, किताबत और तहरीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हुक्म से ऐसा हुआ। हुआ ये था कि फतेह मक्का के मौके पर आपने फरमाया कि अबू शाह को मेरा खत लिख दो, इसी तरह रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर को बतौर खास किताबत हदीस की इजाजत दी। किसको दी हदीस की इजाजत? अब्दुल्ला बिन अमर को। तो गोया के अल्लाह के नबी ने खुद हुक्म दिया था कि हदीस को लिखा जाए। ठीक है, और आज तक ये काम जारी है। अगर आप किताबत हदीस को भी थोड़ा सा देखें ना, तो तीन अदवार इसमें गुजरे हैं। सबसे पहला दौर था दौरे रिसालत और दौरे सहाबा। इसमें हदीस का बहुत सारा तहरीरी सरमाया वजूद में आ चुका था, रिटर्न मौजूद थी। ये बातें आप सुनकर उन लोगों को खामोश करा सकते हैं जो कहते हैं कि जी अल्लाह के नबी के दौर में तो हदीस लिखी भी नहीं थी, तो ये महफूज कैसे रह सकती है? और नौज़ बिल्ला तुम एक बंदे की बात को बस लेकर और आगे से आगे चल रहे हो, तो समझ लीजिए कि ये बात लिखी हुई तब भी थी और मौजूद थी अपनी जगह पे। ठीक है, फिर दूसरा दौर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का। इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में जुबानी और तहरीरी अहदीस को जमा करने का हुक्म मोहम्मद बिन मुस्लिम इब्ने शहाब जोहरी को दिया, जो अपने वक्त के बहुत बड़े हाफिज़े हदीस थे। ये दूसरा फेज था, इस दौर में भी बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद तीसरा दौर है, चौथी सदी के खात्मे तक। इस दौर में बकायदा लिखना शुरू हुआ। आपने मुस्नद का नाम सुना होगा, मुस्नद आयशा, मुस्नद इमाम अहमद, ये इनके दौर में शुरू हुआ था। मुहद्दिसीने कराम सही और ज़ईफ़ रिवायात को बिला इम्तियाज जमा करते थे, ये शुरू की बात है। लेकिन फिर सुल्तानुल मुहद्दिसीन कौन थे? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनकी किताब इंशाल्लाह हम शुरू करने कर रहे हैं, बल्कि किताब शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो इन्होंने सबसे पहले ये किताब लिखी जो सेहत के एतबार से आला दर्जे की थी, और फिर उनके खास शागिर्द इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने भी सही मुस्लिम तरतीब दी, और उसके बाद फिर वो सुनन लिखी गई जिनको सुनने अरबा कहते हैं। तो सही बुखारी जो इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा भी इसके बारे में आपको बता दूं ताकि आप पूरे यकीन के साथ इसको लें। देखिए, जो किताब इमाम बुखारी ने लिखी थी ना, वो तो थी वही जिसका तारुफ आपको पीछे दे चुकी हूं कि अल जामे अस सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह की व सुन्नति व इयामी ही। ठीक है, अब उस किताब में क्या था, बहुत तफसीलात थी, आज के दौर में भी वो 7 से लेकर 9 जिल्दों में भी छपी हुई है। इमाम बुखारी ने चूंकि मेयार बहुत कड़ा रखा था, तो एक बात आपको कई मुख्तलिफ रास्तों से मिली तो आपने उन सबको लिख दिया, ये भी बड़ी बात होती है। देखिए, ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहते हैं मैंने एक बात सुनी, बहुत सारों से सुनी, नहीं, इमाम बुखारी ने वो बात जिस जिस से सुनी होती थी उसकी पूरी हदीस दोबारा बयान करते थे। तो इमाम बुखारी की जो किताब थी जब उन्होंने लिखी थी, तो उस वक्त बुनियादी मकासद यही थे कि सही हदीसों को जमा किया जाए, जोफ ना हो, कोई कमजोर बात ना हो। फिर इसी तरह इमाम बुखारी ने किताब में से मसाइल और अहकाम अखज किए थे, बहुत सारे फिकी अहकाम भी हमें सही बुखारी से मिलते हैं, और इमाम बुखारी की फकाहत पे लोग हैरान है कि ये कैसे लिख लेते थे। फिर इसी तरह आपने बहुत सारे दलाइल जब जमा किए और उसमें से खुद से भी मसले अखज किए थे, लेकिन अब वो किताब इतनी बड़ी, इतनी भारी भरकम थी कि आम पब्लिक के बस की रोक नहीं था, किसको समझे। ये ऐसी है कि जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों की बातें भी पढ़े लिखों को ही समझ आती हैं। कौन का शख्स किसी आलिम जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल जुबान बोले उसकी बात नहीं समझ पाते। तो इमाम बुखारी की जो किताब थी उसमें खूबियां तो बहुत सारी थी, मसलन उनके जो टॉपिक्स हैं, उनके जो अबवाब थे उसका तर्जुमा भी साथ था, यानी टॉपिक है उसका भी नीचे ट्रांसलेशन है। फिर उसमें कुछ ऐसी रिवायात थी जिसको सुलासियात कहते हैं, यानी उनके और नबी सल्लम के बीच में सिर्फ तीन रावी थे। फिर इसी तरह कुछ और चीजें थी। वक्त के साथ अल्लाह ताला ने लोगों को तौफीक दी कि उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्ला की लिखी हुई किताब को इस तरह से रीसेट किया कि उसमें से तकरार निकाल दी, एक हदीस जो 6-7 जगह पे है उसको अलग कर दिया, और इस तरह से उसको पेश किया कि आम लोगों के लिए वो बात आसान हो जाए। मसलन इस वक्त जो किताब हम पढ़ेंगे, ये किताब दारुसलाम पब्लिकेशन की छपी हुई किताब है। थोड़ा सा इसका भी तारुफ जरूरी है क्योंकि सही बुखारी की ये तलहीस है। तलहीस किसको कहते हैं? खुलासा। इस वक्त जो किताब हमारे हाथ में, इसका नाम है अल तजरीदुस सरीखुल अहादीस अल जामे असही, जिसको हम आसान लफ्जों में कह देते हैं मुख्तसर सही बुखारी। इस किताब को जमा करने वाले जो राइटर है उनका नाम है इमाम अबुल अब्बास जैनुद्दीन अहमद बिन अब्दुल्ला अज़ुबैदी रहमहुल्ला। हमें तो नाम भी नहीं याद रहते। ये कब हुई क्या हुआ, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बात समझनी और भी अच्छी लगेगी। जैसा कि जिक्र किया कि इमाम बुखारी की किताब में बहुत कुछ था और ये चीज आम लोगों के हाथ में आनी जरा मुश्किल थी, तो अबुल अब्बास जैनुद्दीन अहमद बिन अब्दुल लतीफ अशुरजी अज़बीदी, ये यमन के शहर में रहने वाले थे। यमन के शहर जबीद के करीब शरजा के मुकाम पर जुमातुल मुबारक की रात 12 रमजान, अब अगला सन लिखना है मैं, बस बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, लेकिन फर्क समझिएगा कि कितने साल बाद ये लिखी गई, फिर आप फर्क कर सकेंगे। 12 रमजान 812 हिजरी, 812 हिजरी, जो के अगर ईसवी सालों के मुताबिक कर लें तो 1410 को पैदा हुए, 1410 ईस्वी में पैदा हुए। आज कौन सा 2014। तो आप देखेंगे कि जो किताब इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं इसको लिखे हुए भी इस वक्त 600 साल से शायद गुजर गया। ये बात बतानी थी आपको। इस वक्त के बड़े बड़े उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया, फन हदीस पर इनको खूब दस्तरस हासिल थी, अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे और माहिर अदब भी थे, और यमन की रियासतों में बहुत अरसा तक दरसे हदीस दिया। तकरीबन 81 यानी 80 ईयर्स की उम्र में शहर जबीत में इंतकाल फरमाया 893 हिजरी में, ठीक है, 1488 बना ईसवी में, तो ये दुनिया से चले गए। और कहते हैं कि शहर जबीद की जरखेज जमीन जो है उसने बहुत सारे उलमा को जन्म दिया, और ये शहर मामून के दौर में बैरूनी आफतों की नजर हो गया। इन्होंने इसके अलावा और भी किताबें लिखी, लेकिन इस किताब में जो चीज इन्होंने बहुत ही खूबसूरत की वो क्या किया कि बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए, अहादीस की जो तकरार थी उसको खत्म कर दिया, और उसके अंदर से फिर इन्होंने बात को लेना इस तरह से आसान कर दिया कि हर बंदे के लिए ये आसान हो गई। चलें, ये तो अरबी में लिखी गई थी ना, अब हम तो पढ़ेंगे उर्दू, तो उर्दू तर्जमा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो था वो किया गया। कब किया गया, कैसे किया गया? उर्दू तर्जमा जिन्होंने किया उनका नाम है शेहुल हदीस अबू मोहम्मद हाफिज अब्दुस्सत्तार हम्माद हफिजहुल्ला, और उस तर्जमे को फिर दोहराया भी गया, जिसको आप कह सकते हैं रीचेकिंग जिन्होंने की, उनका नाम है शेहुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज अल्वी। बहुत मुश्किल लग रहा है ना आज का सेशन, क्या इतने नाम याद करें, लिखा ही नहीं जा रहा, नोट्स भी कैसे लें, कोई जरूरत नहीं है नोट्स लेने की, ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देखिए कितने लोगों की कोशिशें मिलती हैं, तो फिर ये किताब हमारे हाथ में पहुंचती है, इसकी बातें की, किस तरह से लोग इल्म के लिए जान लगाते, माएं कुर्बानियां देती, बच्चों को अपने से दूर रखती, फिर उसके बाद जाके वो चीज इंसानियत को नफा देती है। मुझे इन सारी बातों को पढ़ते और पढ़ाते वक्त तो यही याद आ रहा है कि वाम ममा यन फोन ना सुफयम कुस, जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। इतनी मुश्किल बातों के बाद कुछ स्पिरिचुअल बातें कर लेते हैं। आप देखिए कि आज हमारी माएं या आज के दौर की माएं क्या अपने बच्चों को इस तरह इल्मे हदीस के लिए मुख्तस करना सोच भी सकती हैं? आज वो लोग जो जाके दुनिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आटे में नमक के बराबर है, और वहां भी 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, दैट्स इट। और वहां जाने से पहले भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आज शौक कम हो गया। मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये हदीस और इस इल्म को आम ना किया गया तो आने वाले दौर में क्या होगा। कुरान की भी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है, हदीस की भी हिफाजत है। यहाँ छोटी सी और बात भी समझ लीजिए कि जब लोगों ने हदीस के इल्म को प्ल्यूट करना चाहा, जिसको शुरू में मैंने जिक्र किया फितना इनकार हदीस में, अल्लाह ताला ने हर 100 साल में यानी आफ्टर 100 ईयर्स एक मुजद्दद को भेजा जिसने दीन की तजदीद की। कैसे, थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये भी बात आपकी दिलचस्पी की होगी, आज के दौर पे बात करेंगे। अब देखिए कि आज आपको कोई भी हदीसें जो बहुत शुरू से सुनी थी, लेकिन जब आप कुरान की क्लासेस में आते हैं तो आपको बताया जाता है ये हदीस ज़ईफ है, हाँ ये ऐसे है, ये इसमें कमी है, आप सोच में पड़ जाते हैं, भाई हम तो बचपन से सुनते आए सूरह वाकया इसलिए पढ़ो, सूरह यासीन इसलिए पढ़ो, इससे ये होता है, सूरह वाकया से रिस्क में कमी नहीं होती। अब ये ज़ईफ और ये बातिल की बातें कहाँ से आ जाती हैं? तो समझिएगा, पीछे हिस्ट्री की थोड़ी सी सेशन जो दिया था हदीस की, उसमें बता दिया गया था कि लोगों ने हदीसों में अपनी मर्जी से कुछ हदीसें वजा करके डाली, लेकिन अल्लाह ने आज के दौर में एक बंदे को चुना जिनका नाम नासिरुद्दीन अल्बानी है, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें करे। तकरीबन 10 से 15 साल के बीच में इनका इंतकाल हुए, गुजर चुका है, मुझे इनकी वफात याद है। और मैंने पहले भी शायद कहीं जिक्र किया था कि जब मैं पढ़ रही थी, जो मेरे अपने स्टडीज का दौर था, उस दौर में ये हयात थे अभी, और इनका जिक्र इतना ज्यादा मदरसों और दीनी इदारों में होता है कि जैसे कोई फिल्मों का रसिया हो तो किसी गुलकार या अदाकार का नाम लिया जाता होगा। और उतने में हमें पता चला कि इनका इंतकाल हुआ है। एक वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारी एक और फैमिली भी थी, हम ख्याल हम काफ़ी ज़्यादा इल्मी सफ़र में और इन चीज़ों में साथ थे, रोते हुए यानी मैंने देखा है कि एक दूसरे को मिलते हुए कि आपने कोई खबर सुनी, जैसे कोई अपने किसी अपने प्यारे की मौत की खबर देता ना, इस तरह इनकी वफात की खबर ली दी। ऐसे लग रहा था जैसे खानदान का कोई बुजुर्ग चला गया। हमारी नज़र में ये इतनी मारूफ शख्सियत थी, अखबार का इतना कोई शौक नहीं रहा कभी भी पढ़ने का, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि अगले दिन मैंने इस शौक से कि इतनी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ तो देखें कि अखबार में उनके बारे में क्या कहा है। क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि जब कोई मशहूर बंदा फौत होता है तो फिर उसकी खबरें छपती हैं और आर्टिकल्स और बुलेटिन। हैरत की बात है कि पूरा अखबार छान मारा, बड़े सफ़े पे मेन पे कोई हेडिंग कोई हाईलाइट नहीं, फिर ख्याल आता है कि शायद खबर गलत है। उस दौर में इतनी मीडिया की तेजियां नहीं थी जो आज हो गई हैं कि पलक झपकते में आपको हर तरह से टेक्स्ट आने लग जाए। यकीन कीजिए, छोटी सी खबर अखबार के एक अंदर के सफ़े में कि जिसमें मशहूर आलम दीन नासिरुद्दीन अल्बानी का इंतकाल हो गया, इतनी छोटी थी कि मैं सोचती हूँ कि क्या उनकी वफात की ज्यादा तकलीफ महसूस की दिल ने, या इस बेतनाई की तकलीफ ज्यादा दिल ने महसूस की। ये हालात थे। लेकिन जो बात कहने लगी हूँ कि अल्लाह ने इस सदी में इनको चुना, जिंदगी रही मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह जब भी चाहे पूरी करा लेगा कि मैंने इनकी किताब भी पढ़ानी है आपको, अहादीस ज़ईफ़ा और अहादीस सहीहा। इन्होंने यूं छांट के रख दी वो सारी हदीसें जो आज के दौर में आम थी, जुबान जदे आम, एक एक को चेक किया, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है, कुरान की तरह अल्लाह हदीस की हिफाजत भी करता है। और अब ये कहा जा सकता है कि पूरे का पूरा इल्म महफूज कर दिया गया, तो ऑथेंटिसिटी आज के दौर का मारूफ स्लोगन है। जब तक किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स का यकीन ना हो, मुंह में नहीं डालते, तो क्या इल्म ऐसे ही ले लेंगे। तो बस ये सारे जज्बे दिल में रखते हुए इंशाल्लाह हम अब अगली नशिस्त में सही बुखारी का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, और ये वो टॉपिक है जो किताब के बगैर आप पढ़ नहीं सकेंगे। ये जो बुक हम पढ़ेंगे ना, इसकी सबसे पहली बात है कि इसकी दो जिल्दें हैं, यानी 7 या 9 जिल्दों से घटकर ये 2 जिल्दों में आ गई। पहले हम इंशाल्लाह जिल्द अव्वल पे ही रहेंगे। मैं टॉपिक बोलना चाहूंगी क्योंकि ये भी एक याददाश्त होती है, और इससे फायदा ये होता है कि फिर हम कोई चीज ढूंढना चाहते हैं तो हमें वो आसानी से मिलती है। और ये जो इतना हिस्सा है, इसको हम अपने मेन पेज पे भी डाल देंगे ताकि पूरा सुनने या ढूंढने की बजाय पहले से अंदाजा हो जाए कि ये टॉपिक कहाँ पे है। तो किताब के अंदर जो तरतीब होगी, उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाज़े वही का बयान। इमाम बुखारी की असल किताब में भी यही टॉपिक था, यहाँ भी ये है। फिर दूसरा टॉपिक है किताबुल ईमान, ईमान से मुतल्लिक अहादीस को इसमें जमा किया गया। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा किताबुल इल्म, इल्म का बयान। फिर उसके बाद वुजू का बयान, वुजू करना कराना, उसके बारे में जो भी अहादीस थी वो सारी इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगला है गुसल का बयान, यानी नहाने का और गुसल का बयान है। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा हैज का बयान, फिर तयम्मुम का बयान, फिर नमाज का बयान। कुछ टॉपिक्स हमारे एक से ज्यादा नशिस्तों पे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक पूरा का पूरा हम कवर करें एक ही नशिस्त में। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा नमाज के औकात का बयान। अब यहीं से सोचें कि आप अहादीस की रोशनी में जब ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका इल्म कितना निखर जाएगा। कुरान सुनते वक्त तो तफसीर पे ज्यादा जोर होता है ना, लेकिन हदीस पढ़ते हुए अमल पे ज्यादा जोर होता है, उसमें से फिकही बातों को हम पढ़ेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि अब हम फिक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है अजान का बयान, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर जुमे का बयान, नमाज खौफ का बयान, फिर अगला टॉपिक होगा ईदैन का बयान, फिर वितर का बयान, फिर बारिश तलब करने का बयान, और फिर ग्रहण का बयान, फिर सजदा तिलावत का तरीका, सजदा तिलावत और उसका तरीका, फिर नमाज कसर का बयान, फिर तहज्जुद का बयान होगा, फिर मक्का और मदीना की मसाजिद में नमाज पढ़ना, फिर अगला टॉपिक है नमाज में कोई काम करने का बयान, यानी क्या हम नमाज के दौरान कोई काम कर सकते हैं, फिर सजदा सहव का बयान, और फिर जनाजे का बयान, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा जकात का टॉपिक। जकात के बारे में बहुत सारी चीजें आपको इंशाल्लाह अहदीस पढ़ते हुए वाजे होंगी, फिर सदका फितर का बयान, और उसके बाद फिर हज का बयान, फिर उमरे का बयान, हज और उमरे से रोके जाना, यानी नियत तो की थी लेकिन जा नहीं सके, रुक के रास्ते में, अब क्या करें। फिर शिकार और उसी से मुतलका जो अफाल है उसकी बात होगी, फिर फजाइल मदीना, मदीना शहर के क्या फजाइल है, फिर रोजे का बयान, नमाज तरावी का बयान, एतिकाफ का बयान, खरीदो फरोख्त, यानी ये बहुत अहम होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि लेन देन के मामला, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर सलम का बयान, ये एक तिजारत ही की किस्में, शफा का बयान, इजारा का बयान, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं बिजनेस से और कारोबार से रेलिवेंट, हवालों का बयान, वकालत का बयान, काश्तकारी और बटाई का बयान, फिर मसाकात का बयान, फिर कर्ज लेना और कर्जा अदा करना, तसर्रुफ से रोकना और दिवालिया करार देना, यानी बैंकरप्सी कब फाइल की जाती है, फिर झगड़ों का बयान, फिर गिरी पड़ी चीज को उठाने का बयान, लुक्ता। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा हुकूक का, फिर शराकत का बयान, और फिर गिरवी रखना, प्लेजिंग, क्या आप रहते हैं अपनी जगह पे तो प्लेज करना पड़े तो क्या करेंगे, फिर गुलाम आजाद करने का बयान, हिबा की फजीलत, कि क्या हम कोई अपनी चीज अपनी जिंदगी में हिबा कर सकते हैं किसी को, फिर गवाही का बयान, और फिर शुरूत का बयान, और फिर वसीयतों का बयान। ये सिर्फ आपको मैंने पहली किताब की तरतीब बताई है, तो आप सोच सकते हैं कि एक समंदर है। जब आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे और इसको साथ लेंगे तो कितना आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में थोड़ा सा इस किताब को पढ़ने का तरीका बताकर हम ब्राह रास पहला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वक्त में बरकत दे, फहम खोल दे, और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इमाम बुखारी रहमहुल्ला की उस दुआ का हकदार बना दे जो उन्होंने इस किताब को पढ़ने के लिए की थी। अल्लाह ताला को जमाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ही अपना मसला, कोई बीमारी, कोई तकलीफ जहन में रख के दुआ करनी शुरू कर दें कि अल्लाह मैं इस हदीस को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। कोई भी मांग लें, सेहत मांग लें, औलाद मांग लें, सुकून मांग लें, रिस्क हलाल मांग लें, हराम से निकलना मांग लें, और अल्लाह पे कुछ मुश्किल नहीं कि वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं तो यही दुआ करूंगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार, रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता युनिम व जालना लिल मुत्तकीन इमामा, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हबलना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم إني أسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.